हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतं अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासन व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम प्रेम पुमर्थोमः। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंबफल धरुष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवायतस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 18 जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 23। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं, वे कह रहे हैं, अहम् हि पृष्टो यमनो भवते आचक्ष आत्मा वगमोत्रयावा नभ पतन्त्यात्म समं पतन्त्येण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। अहम् हि पृष्टो यमनो भवद्भिः आचक्ष आत्मा वगमोत्रयावान् नभ पतन्त्यात्म समं पतन्त्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। अहम् हि पृष्टो यमनो भवद्भिः आचक्ष आत्मा वगमत् आत्मा वगमोत्रयावान् नभ पतन्त्यात्म समं पतन्त्येण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। शब्दार्थ अहम् हि पृष्ठोऽयम्। अहम् यानी मैं, हि यानी निश्चित रूप से, पृष्ठ यानी आपके द्वारा जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं वो कौन जिन्होंने पूछे हैं वे कह रहे हैं अर्यमण। अर्यमण यानी सूर्य के समान शक्तिशाली। आप सब सूर्य के समान शक्तिशाली यानी आप सब अंधकार में नहीं हो, आप सब प्रकाश में हो, आप सबको ज्ञान है, इसीलिए आपने इतने सुंदर प्रश्न मुझसे पूछे हैं। भवत भी आपके द्वारा, हे सूर्य के समान प्रकाशमान ऋषियों, आपके द्वारा जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं, आचक्ष आत्मा वगमोत्रयावन। आचक्ष यानी अब मैं वर्णन करूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आत्मा वगमणो आत्मा वगमोत्र जहां तक मेरा ज्ञान है यानी जहां तक मुझे इसके विषय में पता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने मुझसे पूछा है उसका सारा का सारा ज्ञान मुझे है, क्योंकि भगवान के विषय में आपने पूछा है तो भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान तो किसी के अंदर भी नहीं है। इसीलिए आचक्ष आत्मा वगमोत्र यावन, जहां तक मेरा ज्ञान की सीमा है वहां तक मैं आपको बताऊंगा। और आगे कहते हैं नभ पतन्त्यात्म समं पतन्त्री। नभ यानी आकाश में, पतन्त्यात् यानी आकाश में जो उड़ते हैं ना पक्षी, आत्म समम अब जहां तक उनकी क्षमता होती है, जहां तक उनकी लिमिट होती है वो वहां तक। ऐसा नहीं है कि आसमान उतना ही है, आसमान तो और भी ऊपर है और भी ऊपर है, परंतु वो पक्षी की जितनी क्षमता होगी वो उतना ही उड़ेगा ना। इसलिए कहा पतंत्यात्मा समं पतंत्री। ये जो पक्षी हैं वो तो उतने ही उड़ान भर सकते हैं जितने के उसके पंख के अंदर समता होती है। तो मेरे अंदर भी जितना ज्ञान है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तथा समम विष्णु गप्तिम विपश्चित, तथा समम उसी प्रकार वैसे ही विष्णु गतिम विष्णु का ज्ञान विपश्चित विद्वानों के माध्यम से भी, यानी जितना जितना विद्वान होगा, जितना जितना उसे ज्ञान प्राप्त होगा, उतना उतना वो बता सकता है। बाकी भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए जितनी मेरी क्षमता होगी उस हिसाब से मैं आपको अभी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अनुवाद देखिए। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतने ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी है। अपने निराकार स्वरूप से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा के स्वरूप में जन जन के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त भाग्यशाली पार्षदों द्वारा दिव्य प्रेमा भक्ति के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा सकते हैं। अतएव श्री सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीला का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में भगवान स्वयं ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर पाते हैं जितने के लिए वे शक्ति प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनधारणं। जैसा कि नैमिषारण्य के ऋषि गणों ने अभी प्रश्न किया, उनसे श्लोक नंबर 15 में सूत गोस्वामी से कहा, तन्नो भवान्वै भगवत् प्रदानो महत्तमैकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वत्। तन्नो भवान वे भगवत प्रदान, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान के विषय में जानते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो महत्तम एकांत पराए आपका केवल एक ही उद्देश्य है, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हरे रुदारम चरितम विशुद्धम, और भगवान की सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि भगवान के विषय में, भगवान के उदार चरित्र के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में उनके भक्तों को बताया जाए। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वही होता है। तो अब क्योंकि हम भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, शुश्रूषताम वो वितनोतु वित्वन, वितनोतु आप हम पर कृपा कीजिए। शुश्रूषताम हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, हम सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, हमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई कार्य अच्छा नहीं लगता, हम केवल भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, आप हमें भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण करा के कृतार्थ कीजिए। हम भगवान की लीलाओं को जितना सुनते हैं उतना अधिक श्रवण करने की इच्छा हो रही है। अब हमारी इस आतुरता को देखते हुए आप भगवान की लीलाओं को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब इतना सुनने के बाद वे कहते हाँ, अहम ही पृष्ठोर यमणो भवत भी, आप तो स्वयं सूर्य के समान प्रकाशित हैं, आपको तो भगवान के विषय में सब कुछ ज्ञात है, लेकिन ये वास्तव में शुद्ध भक्तों का एक उनका मतलब अगर शुद्ध भक्तों को पहचाना कैसे जाए तो यही एक सिम्टम है, ये लक्षण है शुद्ध भक्त का कि वो भगवान की लीला को, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए कभी भी तृप्त नहीं होता। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता के 9 अध्याय अर्जुन को बताया और 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में अर्जुन भगवान से कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिः शृण्वतु नास्ति मे अमृतम्। आप मुझे पुनः विस्तार से बताइए अपनी विभूतियों के बारे में, अपनी लीलाओं के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपने ऐश्वर्यों के। भूयः कथयः, भूयः फिर से बताइए, वापस सुनना चाहता हूँ। अतृप्तिः, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मेरी संतुष्टि नहीं हो रही है। शृण्वतो नास्ति मे मतम्, आपकी कथाएं तो अमृत के समान है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी एक ही इच्छा होती है कि भगवान की जो ये अमृतमयी कथाएं हैं उनको अपने कर्णों से बस पीते जाए, सुनते जाए, उनकी तृप्ति होती नहीं। यही बात यहाँ पर जो नैमिषारण्य के ऋषिगण है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, बल्कि स्वादु स्वादु पदे पदे, जितना जितना अधिक सुनते जाते हैं उतना उतना आपके विषय में श्रवण करने की इच्छा बढ़ रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि अगर भक्त को पहचानना है तो इसी क्वालिटी से पहचान लो कि वो सदैव मेरे विषय में श्रवण करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी अपनी विवशता के विषय में अत्यंत ही सुंदर वर्णन कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, आचक्ष आत्मवगमोत्र यावान, यानी आत्मवगमोत्र का मतलब होता है जहां तक मेरा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान के विषय में सब कुछ पता है, मुझे आप जो मुझसे पूछ रहे हो उस सबके विषय में संपूर्ण पता नहीं, क्योंकि अभी इनके प्रश्नों के उत्तर में उन्हें भागवत और महापुराण जो कि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था वो सुनाना। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के विषय में मैं आपको पूरा का पूरा। अरे यहाँ तो सूत गोस्वामी बैठे हुए हैं, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा विस्तरेणात्मनो, मुझे पुनः विस्तार से बताओ, तो पता है कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, हंतति कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्यामि। हंतते कथयिष्यामि, मैं बताऊंगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका कल्याण तो तभी होगा जब मेरे विषय में सुनोगे, इसलिए मैं आया ही आपका कल्याण करने के लिए हूँ। हंतते कथयिष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा, दिव्या ह्यात्म विभूतया, अपनी दिव्य विभूतियों के विषय में तुम्हें बताऊंगा। परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी विवशता का इजहार करते हुए कहते हैं, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, सिर्फ वही बताऊंगा जो प्रधान है, वही बताऊंगा जो मुख्य है। अर्जुन ने कहा, क्यों प्रधान ही क्यों, आप मुझे विस्तार से क्यों नहीं बताओगे, पूरा का पूरा क्यों नहीं बताओगे? तो भगवान ने बोला, जो मुख्य मुख्य है वो बताऊंगा, क्योंकि नास्त्यंतो विस्तरस्य, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा, भगवान के सारे गुण अनंत है। भगवान की गुणों का कोई ऐसे नहीं है कि भाई इतना मैं बता दूं उसके बाद कहूं बस इतना ही भगवान का ऐश्वर्य है या इतना ही भगवान का वैभव है। नहीं, भगवान की लीलाएं, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति सब असीम है। इसलिए सूत गोस्वामी पहले ही कह चुके हैं श्लोक नंबर 19 में, कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकान्त परायणस्य योऽनन्त शक्ति भगवान् अनन्तो महत्गुणत्वात् यमनन्त माहु। योऽनन्त शक्ति, भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान की कोई सीमा नहीं है। महत् गुणत्वात् यमनंत माहु, और इन असीम गुणों के कारण भगवान को अनंत कहा जाता है। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, नास्त्यंतो, भगवान का कोई अंत नहीं है। शेषनाग अपने हजारों मुखों से, जब से सृष्टि, जब से वो है, सृष्टि है, जब से भगवान है, तब से अपने हजारों मुखों से भगवान की गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों का बखान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अब तक कर रहे। ऐसा नहीं है कि वहां तक उन्होंने कह दिया बस अब भगवान की लीलाएं समाप्त, भगवान के नाम की महिमा समाप्त, नहीं, फुल स्टॉप कहीं पर नहीं लगेगा। भगवान के गुणों के विषय में जितना जितना बोलते जाएंगे, सारे वेद और शास्त्र भगवान के विषय में बोलते 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 जब सब बोल देते हैं, जब फिर पता है क्या बोलते हैं, वहां लिखा होता है नैति नैति नैति, जो मैंने हमने बताया है समझो सीख करके बराबर बताया, इतना जरा सा बताया, 1% भी बता नहीं सके, क्योंकि जो भगवान के गुण है वो प्रतिक्षण वर्धमान होते हैं। भगवान की लीलाएं प्रतिक्षण बढ़ती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है। भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का कोई भी सीमा नहीं। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी अपनी इस विवशता को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं आपको सारा का सारा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आचक्ष आत्मा व गमोत्र यावन, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक बुद्धि साध्य की, उतना बताऊंगा। जिस तरह से नभ पतंत्यात्म समम पतंत्री, जिस तरह से पक्षी उड़ते हैं आकाश में, वो तो जितनी उसकी उड़ान भर सकेंगे, जितनी उनकी क्षमता है उतना ही ऊपर जाएंगे ना। ऐसे थोड़े है कि वो यहाँ तक बोले बस इससे ऊपर आकाश नहीं है, इससे ऊपर मतलब संभव जाइए जाना, आकाश तो और भी ऊपर है, जहाँ तक वो पक्षी की उड़ान नहीं होती उससे भी ऊपर है। लेकिन पक्षी तो उतनी ही उड़ान बढ़ेगा ना जितनी उसके अंदर क्षमता होगी। तो यहाँ कहा तथा समम विश्व गति विपश्यता, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के विषय में बताते हैं। वरना भगवान ने तो साफ कह दिया, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, नाहं वेदैर् न तपसा न ज्ञानेन चेच्छया। भगवान कहते हैं ना तो मैं वेदों के अध्ययन से जाना जा सकता हूँ, ना तपस्या करने से जाना जा सकता हूँ, ना ज्ञान प्राप्त करने से, ना ध्यान करने से, और ना ही पूजा से जाना जा सकता हूँ। भगवान को जानना संभव नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं भक्त्याम अभिजानन्ति, जितनी जितनी हम भक्ति के, भक्ति एक समुद्र है, और जितना जितना डीप हम उसमें जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, उतना उतना भगवान की महिमा के विषय में और भी ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मेरा भजन करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। अब प्रीति पूर्वकम शर्त है, जो कमी है हमारे पास है ना, तो जितना जितना प्रेम हमारे अंदर है उतना उतना प्रेम से हम भजन करेंगे। तो फिर भगवान ने बोला तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा मुझे नहीं समझ सकते, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, इन इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सका। फिर कैसे सेवान मुखे ही जिह्वा दो, स्वयं एव सुफूर्तियत, वो स्वयं आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके सामने सुफूर्त हो जाएंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भजतम प्रीति पूर्वकम, जितना जितना आप प्रेम से मेरा भजन करोगे तो क्या करूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम, फिर मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे तुम मुझे जान सकते हो। तो हम अपनी इस भौतिक बुद्धि से भगवान की अनंत लीलाओं को, भगवान के अनंत वैभव को, ऐश्वर्य को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब इस संसार में एक लिमिटेड शरीर को लेकर आए हैं, लिमिटेड बुद्धि है और लिमिटेड समय है हमारे पास। लेकिन भगवान क्या है, अनंत है, तो हम भगवान के विषय में नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान ने स्वयं कह दिया प्राधान्यतः कुरुक्षेत्र, मैं तुम्हें सिर्फ मुख्य मुख्य बताऊंगा क्योंकि नास्त्यंतो विस्तरस्य, भगवान भी विवश है अपनी पूरी विस्तार को नहीं बता सकते। अर्जुन ने बोला था कि मुझे विस्तार से बताओ, लेकिन भगवान बोलते हैं कोई विस्तार का एंड थोड़े है, है ना, कहीं पर समाप्ति तो होगी नहीं, तो फिर मैं कब तक तुम्हें बताता रहूंगा। तो सिर्फ जो मुख्य मुख्य हैं, प्रधान हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। वास्तव में भगवान का मतलब ही यही है कि उसके अंदर अनंत, वो अनंत होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जिस चीज से भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में आनंद प्राप्त करना ही जीव आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी कार्य कर रहा है, उसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो यही होता है कि वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, है ना। जिस तरह से एक व्यक्ति, एक मनुष्य घर बनाता है, उसमें सारी सुविधाएं रखता है और वो सोचता है कि इस घर में रहकर मुझे आनंद आएगा, उसी तरह से एक कुत्ता जो धूप से पीड़ित हो जाता है और छांव की तलाश में भाग रहा होता है कि इससे मुझे आनंद आएगा, है ना। एक पक्षी घोंसला बनाता है यही सोच करके मुझे इसमें आनंद आएगा। हर कोई जीव आत्मा अनेक अनेक जन्मों से आत्मा के लिए भटक रही है, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो अपने आप को देह मानकर इन भौतिक वस्तुओं में आनंद को खोज रही है। लेकिन ये भौतिक वस्तुएं उसे आनंद देने की बजाय और भी उसको दुख प्रदान करते हैं। भगवान के शब्द है 5.22, भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। जिन जिन वस्तुओं से इस संसार में भोग भोग के आनंदित होने की कोशिश करते हो ना, वही वस्तुएं दुख योनय एवते तुम्हारे दुख का कारण बनने वाली है। क्यों, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है आद्यंतवंत कौनते, क्योंकि उनका आदि है और अंत है ना। हर एक वस्तु इस भौतिक जगत में जो तुम प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करते हो, एक दिन वो स्टार्ट होता है और एक दिन एंड हो जाता है। जैसे इस संसार में कुछ लोग धन प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत संघर्ष करते हैं, सुबह से रात तक धन प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद उन्हें धन मानो मिल भी जाता है, बहुत बहुत धन प्राप्त कर लिया और कुछ समय तक उससे आनंद भी लिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, तो उसके सारे बच्चे आके बोलेंगे बाबा अब तो तुम मरने वाले हो, जो तुम्हारा खजाना है उस सबको हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वरना तो तुम्हें मरने के बाद हो सकता है एक दूसरे को मार के हम लोग भी मर जाएं, है ना, एक दूसरे में झगड़ा करेंगे, इसलिए ऐसा करो ये धन हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मतलब वही धन जो कल हमारे लिए आनंद का कारण बन रहा था, वही हमारे लिए आज दुख का कारण, क्योंकि आज वो हमसे छिन जाएगा। उसी तरह कुछ लोग को सुंदरता में आकर्षण होता है ना, ये सब भगवान का ही ऐश्वर्य है। कुछ लोग सुंदरता में आकर्षित होकर सुंदर बनने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं और मानो सक्सेस हो गए, सुंदरता प्राप्त कर ली, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं, फेस पे रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, फेस बहुत खुद इतने वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं, शरीर जो है वो साथ नहीं देता, तब वही बुढ़ापा जो है वो हमें दुख देता है कि मैं कल कितना सुंदर था। वही वस्तु जो कल हमें आनंदित कर रही थी वो एक दिन छिन जाती, आद्यंतवंत कौनते, और वो दुख का दिन होता है ना। कोई यहाँ पर कोई भी वस्तु हम प्राप्त करें, जैसे शक्ति, कुछ लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, सिक्स पैक वो ये वो इतना अपना शरीर को बलवान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने इस शक्ति को खो बैठते हैं ना। पूरा जीवन तो शक्ति हमारे साथ नहीं रहती, फिर हमारे वृद्धावस्था में वो शक्ति साथ नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर वो ज्ञान भी उनसे सब कुछ याददाश्त भी भूल जाती है, समझ में भी नहीं आता, याद भी नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं इन इस संसार में जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त करके आनंदित होना चाहते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनते हैं। तो क्यों कारण बनते? क्योंकि उनका आदि है और अंत है, और हम आत्मा है। आत्मा का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। भगवान कहते हैं अनित्यम, ये जो भौतिक जगत है वो अनित्य है, और आत्मा कैसी है? अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन शरीर से रिलेटेड हर एक वस्तु एक दिन हमारा साथ छोड़ जाती है। तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अनंत की आवश्यकता है। वह आनंद जो अनंत हो, अगर भगवान के अंदर ये अनंत आनंद की क्वालिटी न होती तो फिर भगवान भगवान कहलाने के योग्य न होते। भगवान की क्वालिटी ये अनंत जो भगवान का यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर ये सूत गोस्वामी ऐसे न कहते ना कि मैं सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है, तो फिर समझो कि वो सही नहीं कर रहे। मतलब एक सही तरीका यही है कि हम ये बताएं कि भाई हमारे अंदर पूरी क्षमता नहीं है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी, मैं क्या बताऊं अपने इस एक जुबान से, शेष ना करोड़ों जुबानों से मिलकर भगवान की महिमा का बखान नहीं कर सकते। वेद हजारों अक्षरों को करोड़ों अक्षरों को मिला करके भगवान की महिमा को बता नहीं सकते, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है, असीम है, और हम तो उतना ही बता सकते जितना हमारी बुद्धि, हमारी जिह्वा, हमारा ज्ञान हमारा साथ दे सकता है। जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं जिसके पास जो वस्तु होती है हम बोलते हैं ये वान, माना जिसके पास ज्ञान होगा तो कहेंगे ज्ञानवान, है ना, ये बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, और जिसके पास शक्ति होगी उसको बोलेंगे बलवान, ना? जिसके पास धन होगा उसको बोलेंगे धनवान। तो ये भगवान है इसको हम बोलते हैं भगवान। तो ये भग क्या है? भग का मतलब होता है षडैश्वर्य, जो षडैश्वर्य से वान हो, यानी जिसके पास षड ऐश्वर्य छह ऐश्वर्य जो है वो परिपूर्ण मात्रा में अनलिमिटेड मात्रा में हो। और षडैश्वर्य क्या है? सुंदरता, ज्ञान, बल, धन, ज्ञान और वैराग्य, ये सब के सब जिसके पास अनलिमिटेड हो वही भगवान हो सकता है। और भगवान के पास ये भगवान श्री कृष्ण के बल की क्या बात करनी कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन के हैं और इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार डालते हैं, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत वो एक छोटे से मतलब छोटे से है 7 साल के अपने छोटे छोटे हाथों के उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली है उसके ऊपर ऐसे उठा के इंद्र को दिखाते हैं कि देखो इंद्र तुम्हारी सारी शक्ति मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है, है ना। इतना इतने छोटे से भगवान श्री कृष्ण इतने सारे राक्षसों को मारते हैं। तो भगवान के बल की कोई सीमा नहीं है, ये सब तो ऐसे है, ये सब जो चमत्कार हैं वो तो समझो ऐसे हैं कि कोई बहुत बड़ा बलवान हो और उसके ट्रेलर्स हम बता रहे हो कि ये किस तरह से उसको रुई के गोले को फूंक से उड़ाता है। अब ये रुई का गोला जो होता है कॉटन का एक कॉटन बॉल, उसको तो कोई भी फूंक से उड़ा सकता है, लेकिन ये सब अब इस भौतिक जगत में ये बड़े पराक्रम दिखते हैं ना कि राक्षसों को मारना, गोवर्धन को उठाना, ये सब ऐसे है कि बहुत बड़ा पहलवान हो और हम बोले क्या पहलवान है ये, इसने 5 किलो का वजन उठाया। यहाँ तक 5 किलो का वजन तो कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये सब चीजें भगवान के लिए ऐसे ही हैं। भगवान के पराक्रम की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है, लेकिन इस भौतिक जगत में हम इससे अधिक और क्या बता सके, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना ही बता सकता है। अब भगवान की सुंदरता के विषय में बात करें तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान के नेत्र कमल के जैसे हैं, ना बरहावितम समसितम बुद्ध सुंदरंगम। भगवान इतने सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं कि जो मॉनसून क्लाउड्स होते हैं, जो घनघोर घटा जब छाती है तो उस समय जो कितना सुंदर लग रहा होता है ऐसे है, लेकिन यहां तक कहने के बाद ब्रह्मा जी ने बताया मैं नहीं बता सका, ये लिमिट नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, प्राकृत शब्द नहीं है मेरे पास, आगे यहां तक कह दिया। कंदर्प कोटिकमणीय विशेष शोभा, ये कंदर्प, ये मदन जो बड़े बड़े देवी देवताओं को भी अपना प्रभाव डालता है, बड़े बड़े देवी देवता भी जो जिस कंदर्प को देखकर मदन को देखकर मोहित हो जाते हैं, ऐसा एक नहीं दो नहीं कोटि करोड़ों कामदेव भी मिलकर भगवान की सुंदरता का बखान नहीं कर सकते। वो जब भगवान की करोड़ों जो कामदेव हैं वो भी मिलकर जब कृष्ण की सुंदरता को देखते तो मूर्छित होकर गिर जाते, इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के धन की बात करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्मियां जो हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं कि कब हमारी बारी आए। भगवान की धन की क्या बात की कही जाए, तो भगवान के अंदर चाहे सुंदरता हो चाहे ज्ञान हो चाहे बल हो सब अनंत है, लिमिट नहीं है। इसीलिए कहते हैं सूत गोस्वामी के मैं भगवान की सब कुछ जो सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ आत्मवगमोत्र जितना मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक जीव जो है वो भगवान के विषय में श्रवण नहीं करेगा तब तक उसकी आनंद की जो प्यास है जो तृष्णा है वो बुझने वाली नहीं है। जीव जो है अनेक अनेक जन्मों से आनंद के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो भौतिक जगत की वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहा है इसलिए वो इन्हीं के द्वारा दुखी हो रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है इस भौतिक जगत में। क्योंकि शास्त्र कहता है ना अल्पे सुखम, अल्प यानी जिन वस्तुओं का अंत हो जाता है उनके द्वारा कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा, भूमैव सुखम यानी कि जो अनलिमिटेड है अनंत है उसी के द्वारा जीव आत्मा को आनंद प्राप्त हो सकता है। तो ये आनंद की तृष्णा, ये प्रेम की तृष्णा, ये जो भौतिक जगत में हम प्रेम करके आनंदित होना चाहते हैं ना, लेकिन इससे कभी होने वाला नहीं है, ये सिर्फ केवल मूर्खता है जो हम सोचते हैं कि हम भौतिक जगत की किसी वस्तु से या व्यक्ति से प्रेम करके आनंदित हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। ये आत्मा तभी आनंदित हो सकती है जब भगवान से प्रेम करे। तो आत्मा को हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए जो एक लिंक है वो है श्रवण करना। हम जितना जितना भगवान के विषय में श्रवण करते जाएंगे उतना उतना हम भगवान के प्रति आकर्षित होते जाएंगे। ये श्रवण जो है वो भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ने के एकमात्र रास्ता है, एकमात्र तरीका है। इसलिए हमें भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और जितना जितना श्रवण करते जाएंगे उतना उतना हमें भगवान की असीम महिमा के विषय में पता चलता जाएगा, है ना। और हमें ये पता चलेगा कि भगवान की महिमा जिस तरह अनलिमिटेड है उसी तरह भगवान की करुणा भी अनलिमिटेड है। जैसे जैसे अभी सूत गोस्वामी हमें बताते जाएंगे कि भगवान ने किस तरह से किस किस जीव पर कृपा की, तो फिर हमारा विश्वास जो है और भी अधिक भगवान की अंदर पक्का होता जाएगा। जैसे अब हम अलग अलग भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे जिसमें कभी भगवान गजेंद्र पर कृपा करते हैं, गजेंद्र हाथी था है ना, इंद्रद्युम्न राजा से वो हाथी के शरीर में आ गया था, लेकिन वो हाथी के शरीर में जब उसको ग्राह ने मगरमच्छ ने जब उसको पकड़ लिया तब वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना। भगवान की प्रार्थना करते हुए गजेंद्र कहते हैं मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। और इतना सोचने के बाद इतना कहने के बाद वो सोचते हैं क्या भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, है ना, मैं तो हूँ भी पशु जानवर हूँ, भगवान क्या मुझ पर कृपा करेंगे। इतना सोचने के बाद वो अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना गजेंद्र मोक्ष की हमने पढ़ी थी, जिसमें गजेंद्र भगवान से कहते हैं माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिक मनसि प्रतीत प्रत्यक्तृषि भगवति बृहति नमस्ते। माधिक प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणा, मेरे जैसा पशु आपकी शरण में आ गया है। आप तो पति तपावन हो ना, करुणा के सागर हो ना, अगर अच्छे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हो तो कौन सा पति तपावन कार्य किया है, कौन सी करुणा का कार्य है। तुम्हारी करुणा तो उस समय पता चलेगी जब मेरे जैसे जानवर के ऊपर आप कृपा करोगे। माधिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षण, वास्तव में हम सब भी इसी तरह से मगरमच्छ के द्वारा पीड़ित हैं, है ना। उसकी तो सिर्फ टांग को पकड़ा था ये माया रूपी मगरमच्छ, हमें तो गर्दन तक तो बोझ बैठा हुआ है। तो हमें भी भगवान की करुणा के विषय में जैसे जैसे सुनेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कृपया आप हमें इस माया के जाल से छुड़ाओ, क्योंकि जिस तरह गजेंद्र कहते हैं मुक्ताय भूरी करुणाय नमोलया, मुक्ताय, आप तो मुक्त हो ना, आप तो माया से पार हो। अब जो माया के अंदर है वो तो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुक्त हो तो आप ही हमारी रक्षा करो। और भूरी करुणाय, आपके अंदर असीम करुणा है, आप मुझ जैसे जानवर पर भी कृपा करते हो। तो जब जैसे जैसे हम भगवान की कृपाओं के विषय में, भगवान की करुणा के विषय में पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण और प्रेम बढ़ता जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि हम भागवत महापुराण को रोजाना श्रवण कर सकें, मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।